ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विद्यार्थियों को देश में ही भविष्य दिखने का वातावरण बनाने के लिए शिक्षा के स्तर को और अवसर बढ़ाने की बात पर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने दिया जोर। सरकार के साथ चार सूत्रीय सहमति के बाद नेपाल पेट्रोलियम टैंकर चालक संघ ने आंदोलन लिया वापस। आज से ही ईंधन आपूर्ति हुई शुरू। 6 किलो सोने के साथ एक चीनी नागरिक हुआ गिरफ्तार और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई रेल दुर्घटना में 15 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि देश के भीतर ही भविष्य देखने का वातावरण बनाने के लिए शिक्षा और व्यवस्थापन के स्तर को बढ़ाना ही होगा। आज चितवन में कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने शैक्षिक स्तर को बढ़ाकर युवा पीढ़ी को स्वदेश में ही अवसर होने का संदेश प्रवाह करने का निर्देश किया। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान में दाखिल होने वाले और वेटरिनरी में आवेदन देने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या की जानकारी पाकर उन्हें बड़ी खुशी हुई है। साथ ही विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के भैंसों में बेमौसम प्रजनन की तकनीक, अधिक गर्मी सह सकने वाले गेहूं की जात के विकास लगाए तकनीकों का विकास किए होने की बात पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की। मौके पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक जनशक्ति के व्यवस्थापन में सरकार की ओर से सहयोग रहेगा। चितवन के भरतपुर विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि समग्र में बजट संतोषजनक है। साथ ही यह भी कहा कि सुशासन, न्याय और सामाजिक समृद्धि के क्षेत्र में भी बहुत सारी सकारात्मक पहलकदमियां हुई हैं। जर्मनी की यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने आज पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच की गिरी हुई बर्लिन की दीवार का अवलोकन किया। मौके पर प्रथम महिला सविता पोडेल सहित भ्रमण दल के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। जर्मनी के राष्ट्रपति के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर राष्ट्रपति पोडेल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्यक्रम और सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए शनिवार रात जर्मनी पहुंचे थे। राष्ट्रपति पोडेल और जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर के बीच आज बर्लिन में भेंटवार्ता होने का कार्यक्रम है। सरकार के साथ चार सूत्रीय सहमति के बाद आंदोलनरत नेपाल पेट्रोलियम टैंकर चालक संघ ने आंदोलन वापस लिया है। आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में हुई द्विपक्षीय वार्ता में चार सूत्रीय सहमति हुई। इसी बीच नेपाल ऑयल निगम के प्रवक्ता मनोज ठाकुर ने आज से ही ईंधन की सहज आपूर्ति होने की बात कही। बता दें कि ऑयल निगम संचालक समिति अध्यक्ष तथा वाणिज्य सचिव दिनेश कुमार घिमरे की उपस्थिति में हुई वार्ता में ये सहमति हुई थी। सहमति पत्र पर निगम के कार्यकारी निदेशक डॉ चंद्रिका प्रसाद भट्ट और संघ के अध्यक्ष ईश्वर लामा ने हस्ताक्षर किए थे। मेलमची पेयजल विकास समिति मॉनसून से उत्पन्न होने वाली आपदा से परियोजना में हो सकने वाली क्षति से बचने के लिए नदी में बाढ़ या गंदा पानी जैसे लक्षण दिखते ही पेयजल संबंधी काम बंद करने की तैयारी में है। समिति के कार्यकारी निदेशक रत्न लामिछाने ने बताया कि जब भारी बारिश के बाद नदी में पानी गंदा होना शुरू होते ही मेलमची के काम को बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दैनिक महज 17 करोड़ लीटर पानी उपत्यका वासियों को वितरण करने की बात हुई थी, लेकिन बहरहाल मेलमची पेयजल परियोजना से दैनिक 20 करोड़ लीटर के करीब पानी वितरण हो रहा है। संघीय संसद के पदाधिकारी और राजनीतिक दल के प्रमुख सचेतकों की हुई संयुक्त बैठक ने संघीय संसद सचिवालय के कर्मचारियों की मांगों के विषय में अर्थमंत्री से विचार विमर्श करने की सहमति की है। सभामुख देवराज घिमरे के कार्यकक्ष में आज हुई बैठक में यह सहमति हुई। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
ए त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# हैश डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने पार्टी के भीतर कोई मतभेद न होने का दावा किया है। आज काठमांडू में अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि पार्टी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामूहिक ज्ञान से आगामी सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले राजनीतिक और संगठनात्मक दस्तावेज तैयार किए गए हैं। सुर्खेत जिला मुख्यालय वीरेंद्र नगर वार्ड नंबर 11 पिपिरा में कुआं साफ करने के दौरान दम घुटने से दो लोगों की मौत हो गई। स्थानीय तोर्ण विश्वकर्मा के घर के कुएं की सफाई करने के दौरान दम घुटने से वीरेंद्र नगर वार्ड नंबर 11 के 32 वर्षीय विद्या प्रसाद रेग्मी और 31 वर्षीय लक्ष्मी कणेल की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत ने दी। देशभर के इस्लाम धर्मावलंबियों ने आज अपना दूसरा महान त्यौहार बकर ईद उल जोहा मनाया। आज के दिन इस्लाम धर्मावलंबी सुबह स्नान कर नजदीकी मस्जिद या ईदगाह जाकर सामूहिक नमाज पढ़कर एक दूसरे को शुभकामना आदान प्रदान करते हैं। बाढ़ व भूस्खलन के कारण तापलेजुंग के विभिन्न गांवों के 25 परिवार विस्थापित हुए हैं। ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय ने दी। बाढ़ व भूस्खलन के कारण उच्च जोखिम में रहे 13 और जोखिम में रहे 12 समेत कुल 25 परिवार विस्थापित हुए हैं। नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB ने 6 किलो सोना सहित एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। CIB के प्रवक्ता SP होबिंद्र बोगटी के मुताबिक इस मामले में 37 वर्षीय चीनी नागरिक सोनाम गुरुंग को गिरफ्तार किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए एक रेल हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में अन्य 46 लोग घायल भी हुए हैं। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के प्रवक्ता के हवाले से BBC ने बताया, हादसे की वजह से इलाके में 8 ट्रेनें रद्द हुई हैं, जबकि 24 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। रेलवे के मुताबिक मरने वालों में 3 रेलवे कर्मचारी हैं। यह हादसा आज सुबह करीब 9:45 बजे हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को पार कर सियालदह की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से इसे एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इस टक्कर से कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर गए, साथ ही मालगाड़ी के आगे का हिस्सा भी पटरी से उतर गया। रेलवे बोर्ड की CEO और अध्यक्ष जया वर्मा के मुताबिक मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़कर कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी है। इस टक्कर से कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे की तरफ गार्ड का डिब्बा और 2 पार्सल वैन को ज्यादा नुकसान हुआ है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के प्रवक्ता के हवाले से BBC ने बताया है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के करीब 1300 सुरक्षित मुसाफिरों को उसी ट्रेन से सुरक्षित डिब्बों में मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। इस घटना में मालगाड़ी के ड्राइवर के साथ कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी मौत हो गई है। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मारे गए यात्रियों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और मामूली रूप से जख्मी लोगों के लिए 50,000 रुपए मुहैया कराने की घोषणा की गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विद्यार्थियों को देश में ही भविष्य दिखने का वातावरण बनाने के लिए शिक्षा के स्तर और अवसर बढ़ाने की बात पर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने दिया जोर। सरकार के साथ 4 सूत्रीय सहमति के बाद नेपाल पेट्रोलियम टैंकर चालक संघ ने आंदोलन लिया वापस। आज से ही ईंधन आपूर्ति हुई शुरू। 6 किलो सोने के साथ एक चीनी नागरिक हुआ गिरफ्तार और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई रेल दुर्घटना में 15 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।